جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو کل کی کلاس میں ہم نے پیج نمبر 480 تک یہ پڑھ لیا تھا، خلاصہ تفسیر. اگرچہ کہ کل کی کلاس کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی تھی، زوم وغیرہ کا ایشو چلا، پھر اس کے بعد میں سلار پہ ہم نے کلاس اسٹارٹ کر دی تھی، لیکن اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں کر پایا، ذہن میں نہیں آیا. بہرحال جو بھی یہ ریکارڈنگ نہیں بن سکی. تو کل ویسے تو ہم نے عبارت ہی پڑھی تھی کتاب سے، تو انشاءاللہ زیادہ ایکسپلینیشن وغیرہ ہم سے لوز نہیں ہوئی ہے. تو آج ہم پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں تک کہ ہم نے عبارت پڑھ لی تھی. ہاں، تو 480 پر بالکل پہلی لائن تک کی ہم نے خلاصہ تفسیر کی عبارت پڑھ لی تھی. اب اس کے بعد ہم نے معروف مسائل پڑھنے شروع کرنے تھے نا، تو پیج نمبر 481 سے معارف و مسائل پڑھنے شروع کر رہے ہیں ان آیات کی، یعنی سورۃ الفرقان آیت نمبر 45-53. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف و مسائل کے اندر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ مخلوقات الہیہ میں اسباب و سببات کا رشتہ اور ان سب کا قدرت حق کا تابع ہونا، ٹھیک ہے نا، بڑا ہی امپورٹنٹ توحید والا سبق ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے اسباب، یعنی جو مینز کہلاتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، اور مسببات، یعنی جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان مینز سے کاز ہوتی ہیں، رزلٹ ہوتی ہیں ان مینز کی وجہ سے، ان کو مسببات کہتے ہیں. صحیح، تو ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ قدرت حق یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہیں. صحیح ہے، قدرت ان کے تابع نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہیں. تو اب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مذکور صدر آیات، یعنی ان جو آیات اوپر ذکر ہوئی بھی ہیں نا، تو ان آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بندوں پر اس کے انعامات و احسانات کا ذکر ہے، جس سے تعالیٰ کی توحید اور استحقاق عبادت میں اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. تو ایک تو چیز ہوتی ہے اللہ کی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اکیلے ہیں، اکیلے سے مراد یعنی ایک ہی معبود ہیں، کوئی اور معبود، یعنی ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ہیں جنہوں نے بنایا ہے، اور ایک ہے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ تو کلمہ توحید ہے، لیکن یہ تو کلمہ طیبہ کہلاتا ہے. کلمہ توحید کیا کہلاتا ہے؟ کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے اور دوسرے بھی معبود ہیں ساتھ ساتھ، اس کی عبادت کے اندر شریک ہیں. ٹھیک ہے، تو عبادت میں کسی اور کا شریک نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. الم تر اذا ربک کیف مد الظل، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ وہ کیسے سائے کو کھینچتا ہے، لمبا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی اور اس کے کاروبار نہیں چل سکتے. ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لیے کیسی مصیبت ہو جائے، یہ تو ظاہر ہے. اور سایہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت سایہ ہی رہے، کبھی دھوپ نہ آئے، تو انسان کی صحت و تندرستی نہیں رہ سکتی، اور بھی ہزاروں کاموں میں خلل آئے گا. یعنی اگر دھوپ بالکل بھی نہ نکلے، सिर्फ साया रहे, यानी सनलाइट ना पहुंच रही हो, सन की जो है वो हीट ना पहुंच रही हो, तो फिर वहां पर इंसानों का रहना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जैसे यानी कुछ जगह होती हैं दुनिया के अंदर जहां पर कि अक्सर वक्त जो है ना वो सनलाइट नहीं होती है, तो ऐसी जगहों के ऊपर रहना जो है वो कितना दुश्वार होता है। बेशक इस वक्त मॉडर्न डेवलपमेंट्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और जो यानी हीटिंग सिस्टम वगैरह अब डेवलप हो गए हैं, तो इनकी वजह से लोग रह तो लेते हैं, राइट। लाइक नॉर्वे के ऊपर, आर्कटिक नॉर्वे के ऊपर भी लोग रह रहे होते हैं, राइट। जो आर्कटिक पोल के साथ बिल्कुल बराबर में नॉर्वे का जो एरिया है वो आर्कटिक नॉर्वे कहलाता है, वहां भी इंसान रह रहे होते हैं। लेकिन कैसी यानी कितनी उनको लवाजमात की जरूरत पड़ती है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, ऐसे नॉर्मल आसानी के साथ नहीं रह सकते जिस तरह से कि दुनिया के दूसरे इलाकों के अंदर लोग रह लेते हैं, ठीक है। और अगर ये सारी लवाजमात ना हो तो फिर तो वो बीमारी का शिकार होंगे और कुछ अरसे में फिर वो मर ही जाएंगे, नहीं रह सकेंगे इतना आसानी के साथ। तो सिर्फ धूप का होना भी जो है वो एक मुसीबत का सबब बन जाता है, और सिर्फ जो है वो साए का होना भी मुसीबत का सबब बन जाता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये दोनों नेमतें अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाई और इंसानों के लिए उनको मूजब राहत व सुकून बनाया। लेकिन हाँ, ताला ने अपनी हिकमत कामिला से इस दुनिया में पैदा होने वाली तमाम अशिया को खास खास असबाब के साथ मरबूत कर दिया है, राइट, कनेक्ट कर दिया है, रब्त उनका पैदा कर दिया है, जो जो चीजें बनाई हैं उनको असबाब के साथ, कि जब वो असबाब मौजूद होते हैं तो ये चीजें मौजूद हो जाती हैं, जब नहीं होते हैं तो ये चीजें भी नहीं रहती हैं। असबाब असबाब तवी या ज्यादा होते हैं तो उनके मुसब्बबात का वजूद भी तभी और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कल भी बात हुई थी ना कि अगर लाइट जो है वो ज्यादा ब्राइट हो तो उससे साया भी ज्यादा डार्क हो जाता है, और लाइट अगर हल्की हो तो साया भी हल्का हो जाता है, सही है। तो ये तो एक एक मिसाल है, लेकिन ये मिसाल, इस तरह की मिसालें आपको हर जगह नजर आती हैं। तो असबाब के साथ साथ मुसब्बबात का भी कवी या कम होना, तो वो कमजोर या कम होते हैं, यानी असबाब कमजोर होते हैं या कम होते हैं, तो मुसब्बबात भी कमजोर या कम हो जाते हैं। गल्ला और घास उगाने का सबब जमीन और पानी और हवा को बना रखा है, ठीक है। कि जमीन होती है, जितनी फर्टाइल जमीन होगी उतनी अच्छी फसल पैदा होगी, और जितनी कम फर्टाइल जमीन होगी उतनी कम अच्छी फसल पैदा होगी। रोशनी का सबब आफताब महताब को बना रखा है, यानी आफताब तो सूरज हो गया, ठीक है, और महताब जो है वो चांद को कहते हैं। तो रात के वक्त भी चांद की रोशनी जब कभी होती है तो चांद रोशनी का सबब बन जाता है उन रातों के अंदर। बारिश का सबब बादल और हवाओं को बना रखा है, और इन असबाब और उन पर मुरतब होने वाले असरात में ऐसा मुस्तहकम और मजबूत रब कायम फरमा दिया है कि हजारों साल से बगैर किसी अदना फर्क के चल रहे हैं। यानी ये सिस्टम चल रहा है, हजारों साल हो गए, या इन मॉडर्न साइंटिस्टों के हिसाब से जो है वो मिलियंस ऑफ इयर्स हो गए, यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ठीक है। तो यानी लाखों साल साइंसदानों के हिसाब से, और हजारों साल जो है वो उलमा के हिसाब से, तफसीर के हिसाब से हजारों साल बनते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम चल रहा है। आफताब और उसकी हरकत और इससे पैदा होने वाले दिन रात और धूप छांव पर नजर डालो तो ऐसा मुस्तहकम निजाम है कि सदियों बल्कि हजारों साल में एक मिनट बल्कि एक सेकंड का भी फर्क नहीं आता, ठीक है ना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से अजीब सिस्टम है कि हमारे हजरत जो है वो रात को तफसीर पढ़ाते हैं और हम जो है वो दोपहर को तफसीर पढ़ाते हैं। तो सुबह में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि रात को भी चल रहे होते हैं और सुबह को भी चल रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है वो याद दहानी हो जाती है अल्लाह की तरफ से। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हजरत ने इस दफा सूरह रहमान पढ़ानी है और ये पढ़ाने हैं और ये सारी बातें करनी है। तो कल रात हजरत ने ये सारी बातें भी करी थी ना कि जी ये जो जमीन है वो उसकी कितनी स्पीड है, 18, कितना फरमाया था, 18 miles per second, ये जमीन की रोटेशन की स्पीड है अराउंड द सन। 18 miles per second की स्पीड जो होती है वो जो राइफल की बुलेट होती है ना उस बुलेट से भी ज्यादा उसकी स्पीड होती है, लेकिन इतनी तेजी से जमीन चल रही है और हमें पता भी नहीं चलता कि जमीन जो है वो हिल रही है, राइट। और उस जमीन के ऊपर जो लोड शिफ्टिंग हो रही है मुस्तकिल, है कभी कोई प्लेट शिफ्ट हो रही होती है, कभी सामान शिफ्ट हो रहा होता है, कभी लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं, कभी पानी शिफ्ट हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, लेकिन जमीन के अंदर जो है वो कोई शेकिंग क्रिएट नहीं होती जो हमें फील हो, है ना। और जो है वो क्या क्या और बातें बताई थी कि अगर जो है वो जमीन की मूवमेंट स्टॉप होना शुरू हो जाए तो उसके सूरत क्या बताई थी, अगर एकदम से स्टॉप हो जाए, राइट, तो जो इनर्शिया इफेक्ट क्रिएट होगा तो हम सब के सब जो है ना वो अपनी जगहों से उड़ करके जाना शुरू हो जाएंगे, राइट, जैसे एक्सीडेंट होता है। और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन की रोटेशन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाए तो उससे जो है वो ऐसे जोन्स क्रिएट हो जाएंगे अर्थ के अंदर कि जिनमें के एक्सट्रीम हीट वाला जोन बन जाएगा और एक एक्सट्रीम कोल्ड वाला जोन बन जाएगा। ना एक्सट्रीम हीट के अंदर इंसान जिंदा रह सकेंगे, ना एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर, बल्कि इंसान तो क्या कोई भी क्रिएशन जिंदा नहीं रह सकेगी, राइट। तो सारी बातें जो है वो कल आपने सुनी होंगी जो जो मतलब के बयान आप भी सुन रहे हैं। तो आज हम वही जो है यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि सदियों बल्कि हजारों साल में एक मिनट बल्कि एक सेकंड का भी फर्क नहीं आता। ना कभी आफ्ताब और महताब वगैरह की मशीनरी में कोई कमजोरी आती है, ठीक है ना, कि भाई आफ्ताब जो है वो जरा तेज चलना शुरू हो जाए तो वो जा करके जो है वो चांद को पकड़ ले, चांद के साथ टक्कर हो जाए, या चांद की जो है वो टक्कर हो जाए किसी और चीज के साथ जा करके, कभी ऐसा नहीं होता। और ना ना कभी उनको इस्लाह और मरम्मत की जरूरत होती है। जब से दुनिया वजूद में आई एक अंदाज एक रफ्तार से चल रहे हैं। हिसाब लगाकर हजार साल बाद तक की चीजों का वक्त बतलाया जा सकता है। ये जो आपको प्रेयर कैलेंडर्स नजर आते हैं, प्रेयर टाइम टेबल्स क्या कहते हैं उनको, उनके ऊपर लिखा होता है ना परपेचुअल परपेचुअल प्रेयर टाइम टेबल फॉर कराची, फॉर रियाज, फॉर मक्का मुकर्रमा। परपेचुअल क्यों लिखते हैं, परपेचुअल का मतलब होता है कि ये तब्दील नहीं होने वाले, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। भाई कैसे इतना बड़ा आपने जो है वो क्लेम कर लिया कि ये जो टाइम टेबल है प्रेयर टाइम टेबल है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, हाउ कैन यू क्लेम सच अ थिंग। इस बेसिस के ऊपर क्योंकि अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ निजाम है जमीन और आसमान के गर्दिश का, ये निजाम जो है वो तब्दील नहीं होने वाला है, राइट। होगा तो कयामत आ जाएगी, जब कयामत आ जाएगी तो आपको टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। लेकिन जब तक कयामत नहीं आएगी ये निजाम जो है वो तब्दील नहीं होने वाला कि अर्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। वो तो सूर से कयामत आएगी, कयामत जो है वो अर्थ के स्लो डाउन होने से नहीं आएगी। तो चूंकि ईमान वाले का ये इतमाद होता है इस बात के ऊपर तो इस वजह से उस पर लिख देते हैं परपेचुअल, ठीक है ना, परपेचुअल टाइम टेबल। तो अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर फिर आप हजार साल तक चीजों का वक्त बताया बता सकते हैं। सबब और मुसबब का ये मुस्तहकम निजाम जो हक ताला की कुदरत कामिला का अजीब व गरीब शाहकार है और उसकी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा की बुरहान कतई है, उसके इस्तेहकाम ही ने लोगों को गफलत में डाल दिया, ठीक है। अब जो गाफिल होते हैं अल्लाह ताला से, गाफिल यानी अल्लाह के नबियों से की बात ना मानने वाले लोग, ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो असबाब में ऐसे गुम होते हैं, राइट, ऐसे असबाब के अंदर फंसते हैं कि मुसब्बिबुल असबाब से गाफिल हो जाते हैं, राइट, कि भाई हाँ दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, ये तो नेचर का सिस्टम है, राइट, सिस्टम ऑफ नेचर। कल एक पता नहीं कौन सा आपका किसी ने वीडियो भेज दी, मेरे खानदानी बुजुर्ग हैं उन्होंने भेजी तो मैंने देख ली, ठीक है, वो पता नहीं क्या है, वो तो नाम से तो लगता है शिया है लेकिन हो सकता है ना भी हो, क्योंकि कभी कभी किसी सुन्नी के भी ऐसा नाम होता है। तो उन्होंने जो है वो अपनी तकरीर के अंदर दे मारा कि जी एक होता है शरीयत का निज़ाम और एक होता है फितरत का निज़ाम, ये दोनों अलग अलग निज़ाम है ना। वही जो बात जो इंटेलेक्चुअल्स करते हैं कि शरीयत के निज़ाम के अंदर तो जो है वो माफ़ी हो जाती है, फितरत के निज़ाम के अंदर माफ़ी नहीं होती है, फितरत के निज़ाम में अगर सुस्ती करोगे तो तुम्हारा जो है वो काम नहीं बनेगा, सुस्ती करोगे तो ये नहीं होगा, सुस्ती करोगे तो वो नहीं होगा। ये जो एक एक तरबियत के अंदाज में लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बहरहाल ये दोनों अलग अलग निज़ाम तो नहीं है ना भाई, ये दोनों अल्लाह ही के निज़ाम है यार, शरीयत भी अल्लाह ही का निज़ाम है और फितरत भी अल्लाह ही का निज़ाम है, फितरत को कोई अलग पैरेलल सिस्टम के थोड़ी चल रहा है। बहरहाल वो जो भी कहना चाहते थे तो उम्मीद है कि उनकी मतलब जो है वो वही होगा कि जैसे कि हमारे मुशायख भी समझते हैं इस बात को। एनीवे तो ये जो सिस्टम है ना अल्लाह ताला का बनाया हुआ, इसकी कुदरत कामिला वो और उसकी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा की बुरहान कतई है, यानी सब का सब अल्लाह ही की तरफ पॉइंट करता है, उसके इस्तेहकाम ही ने लोगों को गफलत में डाल दिया, ठीक है, कभी लोग समझना शुरू होगा कि ये कोई अलग से सिस्टम है, ये कोई अलग सिस्टम चल रहा है जिसको नेचर का नाम दे दिया, फितरत का नाम दे दिया। असल में इस वजह से मैंने बात कर दी थी, ठीक है, तो उसको नेचर का नाम दे दिया कि हाँ जी ये तो कोई अलग ही सिस्टम है। लोगों ने इसको इसने लोगों को गफलत में डाल दिया कि उनकी नजरों में सिर्फ ये असबाबे जाहिरा ही रह गए, ठीक है ना। यानी जो बिल्कुल ही काफिर थे उन्होंने तो कहा कि नहीं जी यही एक सिस्टम है बस, जिसको नेचर कहते हैं। और जो जरा बैन बैन किस्म के मुसलमान थे तो उन्होंने कहा कि हाँ जी वो एक अलग सिस्टम है जिसमें कि अल्लाह की मर्जी चलती है, और ये एक अलग सिस्टम है जिसके अंदर के मादी सिस्टम चलता है, और ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली डिस्टिंक्ट सिस्टम्स हैं, राइट। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी धोखा ही हो गया कि भाई ये सिर्फ असबाब जाहिरा ही रह गए, और इन्हीं असबाब को तमाम चीजों और तासीरात का खालिक और मालिक समझने लगे। बात समझ में आई सबको कि कैसे काफिर कंफ्यूज हुए इसके अंदर, और कैसे जो है वो काफिरों की इत्तेबा करने वाले मुसलमान भी कंफ्यूज हो गए, है ना। काफिरों की कंफ्यूजन तो जरा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है कि भाई काफिरों को तो अल्लाह ताला नजर ही नहीं आते, अल्लाह ताला का वजूद ही का इनकार कर देते हैं, या नबी अलैहिस्सलाम का ही इनकार कर देते हैं। लेकिन मुसलमानों को कैसे धोखा लगता है, मुसलमानों को ऐसे धोखा लगता है कि मुसलमान जो है ना फिर इन दो चीजों को जो है ना वो अलग अलग डील करना शुरू कर देते हैं, है ना। कि जिस वो कहते हैं ना कि वो गिफ्ट टू, वो क्या हमारे पता नहीं वो भाई है कि यहाँ पे नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ, गिफ्ट टू सीजर व्हाट इज सीजर्स एंड गिफ्ट टू पोप व्हाट इज पोप्स, ठीक है ना। सीजर जो है ना ये दुनियावी असबाब का मालिक था, बड़ा बादशाह था ये, जिसको कि हम सिकंदर आजम कहते हैं, सीजर, राइट। तो जो सीजर का हक बनता है ना वो तुम सीजर को दे दो, और जो पोप का हक बनता है यानी दीन का जो अलमबरदार होता है ईसाई मुआशरे के अंदर उसको पोप कहते हैं, ठीक है। तो जो पोप का है वो तुम पोप को दे दो, ठीक है ना। तो वो भी अपनी जगह पर सही है, ये भी अपनी जगह पर सही है। उसी तरीके से हम मुसलमानों ने भी जब इनके रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो हमने कहा जी मौलाना साहब को मौलाना साहब वाला हिस्सा दे दो, और जो साइंसदान साहब है उनको साइंसदान वाला हिस्सा दे दो। यानी जैसे कि कहते हैं कि जुम्मा जो है वो मौलाना साहब के लिए, या जुम्मा मस्जिद के लिए, जुम्मा खुदा के लिए, और बाकी हफ्ता जो है वो अपने पेट के लिए, ठीक है ना। तो वो भी अपनी जगह पर सही है, ये भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये तो ईमान नहीं है ना, या ये कम से कम कामिल ईमान तो नहीं हो सकता, ये तो नाकिस ईमान है, राइट। कामिल ईमान तो ये है कि सब कुछ अल्लाह की ताबे है, राइट, और सब कुछ के अंदर जो है ना वो हमने दीन से ही रहनुमाई लेनी है, ठीक है ना। हत्ता के दुनियावी मामलात में भी हमने दीन की रहनुमाई को साइड पे नहीं रखना है कि जी हम बैंकिंग जो है वो कर रहे हैं तो ये तो बैंकिंग जो है ना ये तो सरासर जो है वो रोकड़े वाला मामला है, ठीक है ना। तो रोकड़े वाला मामला जो है तो इसके अंदर मौलवी साहब का क्या अमल दखल, नहीं, उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि जी जो आपके मामला चल रहे हैं ये मामला जो है वो सूदी मामला तो नहीं है, राइट, ये कोई ऐसे गैर शरी किस्म के मामला तो नहीं है। तो बज़ाहिर दुनियावी मामला है लेकिन दीन की रहनुमाई उधर भी चलेगी, ठीक है। तो हमारा तो सब कुछ ही दीन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कोई अलग अलग थोड़ी हम कर सकते हैं इन दोनों चीजों को। सिस्टम का ताल्लुक लोगों से है और लोगों का ताल्लुक अल्लाह से है, तो सिस्टम कैसे अलग हो गया। जी हाँ, इसको बिल्कुल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सब कुछ एक ही है असल में, तो दोनों जो है वो अच्छा। मुसब्बिबुल असबाब की असली कुव्वत, या हाँ, कि असली कुव्वत जो इन असबाब की पैदा करने वाली है वो असबाब के पर्दों में मस्तूर हो गई, ठीक है ना। यानी जो गाफिल इंसान होता है, चाहे काफिर हो चाहे गाफिल मुसलमान हो, तो उसकी निगाहों पर ना पर्दा छा जाता है उसकी निगाहों के ऊपर, ठीक है। तो वो ऐसा पर्दा होता है कि वो असबाब तक तो वो देख रहा होता है लेकिन असबाब के पीछे जो है ना वो उसको मुसब्बिबुल असबाब नजर नहीं आ रहा होता, तो वो फिर पर्दों में मस्तूर हो जाता है उसके लिए, एज इफ। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम और आसमानी किताबें इंसान को बार बार इस पर मुतनब्बेह करती हैं कि जरा नजर को बुलंद और तेज करो। जैसे छुरी भी तो होती है ना, जो किचन में छुरी इस्तेमाल हो रही होती है वो मुंदमिल हो जाती है, वो जो है वो उसके एजेस जो होते हैं ना वो अब भाई सब्जी अच्छी तरह से नहीं कट रही, ठीक है ना, फ्रूट नहीं कट रहा, तो जरूर चलो जी छुरी को तेज करने की जरूरत है। जब तेज करेंगे ना तो फिर ये कटना शुरू होगा। उसी तरीके से इंसान की निगाहें भी जो होती है ना वो भी जो होती हैं वो डिम हो जाती हैं, वो भी जो होती है ना वो ज्यादा दूर देखने की इस्तेदाद उनमें खत्म हो जाती है, तो उनको तेज करना पड़ता है, उनकी भी तजदीद करनी पड़ती है। ईमान की तजदीद करनी पड़ती है ना, बसीरत की तजदीद करनी पड़ती है। तो इनको तेज करो, बुलंद करो, असबाब के पर्दों के पीछे देखो कौन इस निजाम को चला रहा है, ताकि हकीकत तक राह पाओ। असल हकीकत तो तुम्हें उसी को समझ में आएगी। और ये रिमाइंडर जो है, ये किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, इन दोनों का यही काम होता है कि किताबुल्लाह भी रिमाइंडर्स देती रहती है और रिजालुल्लाह भी रिमाइंडर्स देते रहते हैं हमें, राइट। मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, कि ये नेक लोग, ये ईमान वाले कौन लोग होते हैं कि जो कि खर्च करते हैं उस रिस्क में से जो कि हमने इनको दिया है, राइट। तो ये हमने इनको दिया वाला जो लफ्ज़ अल्लाह ताला बार बार इस्तेमाल फरमाते हैं, तो ये क्या है, ये रिमाइंडर है कि ये जो तुम्हारे पास माल आया हुआ है, ये तुम्हारी अपनी अजवाब से नहीं आया, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है तो आया है ना। तो जो इस बात को पढ़ेगा और समझेगा तो उसको रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे हर वक्त कि भाई अल्लाह को मत भूलना। इसी सिलसिले के ये इरशादात हैं जो आयात मज़कूरा में आए हैं, ठीक। तो ये भी एक रिमाइंडर्स ही हैं इन आयात के अंदर। आयत अलम तर इला रब्बिका कैफ मद्दा ज़ुल्म में गाफिल इंसान को इस पर तनब्बुह किया गया है, मुतनब्बे किया गया है कि तू रोजाना देखता है कि सुबह को हर चीज का साया जानिब गर्ब दराज होता है, मगरब की तरफ, बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो जो साया होता है वो वेस्ट की तरफ लंबा होता है, फिर वो घटना शुरू होता है यहाँ तक कि निस्फ़ुन्नहार के वक्त, तो बिल्कुल जो है वो ज़ेनिथ टाइम हो जाता है, तो उस वक्त जो है ना साया मादूम या कल आदम हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है जैसे को था ही नहीं। आदम का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंट, कल आदम एज इफ इट डिड नॉट एग्जिस्ट, यह है कल आदम का तर्जुमा अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। तो साया जो है वो कल आदम हो जाता है, फिर जवाल के बाद यही साया इसी तदरीजी रफ्तार के साथ मशरक की तरफ की जाने में फैलना शुरू हो जाता है। हर इंसान इस धूप और छांव के फवायद हर रोज हासिल करता है और उसकी आंखें देखती हैं कि ये सब कुछ आफ्ताब के तुलू होने, फिर बुलंद होने, फिर गुरूब की तरफ मायल होने के लाजमी नतायजो समरात हैं। लेकिन आफ्ताब के कुर्रे की तस्लीफ, फिर इसके एक खास निज़ाम के तहत बाकी रहने का काम किसने किया, ये आंखों से नजर नहीं आता, इसके लिए दिल की आंखें और बसीरत दरकार है, ठीक है ना। जिसके दिल की आंखें काम कर रही होती हैं तो उसको ये चीजें नजर आ रही होती हैं कि हाँ भाई ये देखो कैसे अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया। और जिस जो दिल का अंधा होता है, बेशक उसकी सर के ऊपर जो आंखें वो काम कर रही हों, लेकिन उसको ये चीजें नजर नहीं आती हैं। इसी वजह से अंबियाए कराम इस दुनिया में जो भेजे गए ना, वो दिलों को जिंदा करने के लिए भेजे गए, राइट। वो आई साइट को 6x6 करने के लिए, चश्मे बनाने के लिए, कि लोगों को जो है वो चश्मा इंडस्ट्री बना करके दे दें, राइट। ये इस काम के लिए अंबियाए कराम ने भेजे गए थे। उसी तरह अंबिया के जो वरसा हैं वो भी दिलों पर काम करने के लिए इस दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग कहते हैं कि जी वो स्टीफन हॉकिंग्स ने जो जो बकवास करी है, तो ये हमारे उलमाई वाली बकवास क्यों नहीं करते, है ना। भेजा बेशक उसकी कुछ बातें ठीक भी निकल आई हूँ, ठीक है ना, लेकिन जब इस तरह से बात करेंगे उलमा के बारे में तो हम तो बकवास ही कहेंगे फिर उसकी सारी बातों को, ठीक है ना। आपके नज़दीक उनकी अहमियत होगी, हमारे नज़दीक तो उनकी अहमियत नहीं है। ज़रूरत के तहत बेशक हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बस उसी हद तक रखेंगे, उससे ज़्यादा उसकी अहमियत हमारी निगाहों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ठीक है। तो अम्बिया तो भाई वो दिलों पर मेहनत करने के लिए भेजे गए थे ना, और उलमा कराम का भी यही काम होता है। तो हम जो है वो उनसे जो है वो कुछ और एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दें, तो ये तो हमारा मसला है ना, उनका मसला तो नहीं है। आयत मस्कुरा में यही बसीरत इंसान को देना मकसूद है कि ये सायों का बढ़ना घटना अगरचे तुम्हारी नज़रों में आफ्ताब से मुतालिक है, मुतालिक है यानी इसका ताल्लुक आफ्ताब के साथ है तुम्हारी निगाहों के अंदर, मगर इस पर भी तो गौर करो कि आफ्ताब को इस शान के साथ किसने पैदा किया और इसकी हरकत को एक खास निज़ाम के अंदर किसने बाकी रखा है। जिसकी कुदरत कामिला ने ये सब कुछ किया है, वही दर हकीकत इस धूप छाँव की नेमतों का अता करने वाला है। अगर वो चाहता तो इस धूप छाँव को एक हालत पर कायम कर देता, जहां धूप है वहां हमेशा धूप रहती, जहां छाँव है हमेशा छाँव रहती, मगर उसकी हिकमत ने इंसानी जरूरियात और फवायद पर नजर करके ऐसा नहीं किया। वलौ शाअ लजअलहु साकिनन का यही मतलब है, अगर चाहता तो ये शेडो वाला सिस्टम जो है वो होता ही नहीं। जैसे बात हुई थी कि ये जो फिजिकल लाइट होती है ये भी पेनेट्रेट कर सकती हमारी बॉडीज को, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पेनेट्रेट करती हैं, या जैसे जो है वो ये जो माइक्रोवेव रेडिएशंस पेनेट्रेट करती हैं फिजिकल बॉडीज को, तो ये लाइट की वो पेनेट्रेट नहीं कर सकती थी। भाई अल्लाह ने नहीं बनाया इसको, ये कैपेबिलिटी दी नहीं कि वो फिजिकल बॉडी को पेनेट्रेट कर सके, इस वजह से साया बनता है, ठीक है, तो अगर चाहता तो इसको फिक्स कर देता कि साया वाया कोई नहीं बनता यार, साया एक दफा बन गया अब वो चेंज ही नहीं होता कभी। इंसान को इसी हकीकत से आगाह करने के लिए साए के वापस लौटने और घटने को आयते मस्कूरा में इस उनवान से ताबीर फरमाया है कि कबलनाहु इलैना कबलन यसीरा, यानी फिर साए को हमने अपनी तरफ समेट लिया। ये जाहिर है कि हक ताला जिस्म और जिस्मानियत और जहत और सिमत से बालतर है, यानी अल्लाह ताला का कोई फिजिकल जिस तरह जिस्म हम समझते हैं जिस जिस्मानी वजूद को, अल्लाह ताला का वैसा कोई वजूद नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह का वजूद नहीं है? आपने देखा है जाकर के अल्लाह को कि अल्लाह का जिस्म नहीं है, ठीक है, या जिस्मानियत नहीं है? कैसे ये इजाजत फरमा रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियत और जहत और समझ से बालातर है? क्या हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अल्लाह ताला को देख करके आए हैं जो कह रहे हैं इस तरह की बात? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हमें बताया है, राइट, अल्लाह के कलाम के अंदर ये मौजूद है, लैसा कमिस्लिही शय, कि अल्लाह ताला के मिसल कोई भी चीज नहीं है। तो हम जिस भी चीज को देखते हैं ना, जिस भी चीज को हम अपने दिमाग के अंदर तसव्वुर कर सकते हैं या करते हैं, मैटर हो, फिजिकल यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, या इसके अलावा भी कोई चीज हो, जिस जिस चीज को के हम अपने तसव्वुर के अंदर सोच सकते हैं ना, अल्लाह ताला उससे अलग है, राइट। यानी जो चीज भी शय कहलाने के काबिल है, चाहे वो तखयलाती शय हो, चाहे वो तसवुराती शय हो, चाहे वो आपकी मुशाहिदाती शय हो, जिसको आपने मुशाहिदा किया, सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस, इनको आपने मुशाहिदा किया, या कभी आपने जो है वो किसी जिन को देख लिया, राइट। अब जिन जो है वो ना सॉलिड्स में आता है, ना लिक्विड्स में आता है, ना गैसेस में आता है। कभी आपने फरिश्ते को देख लिया भाई, है वो दे दिया अल्लाह ताला ने आपको कश, आपने फरिश्ते को देख लिया, है ना, या आपने कभी ख्वाब के अंदर कोई चीज देख ली, सही है। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो शय बन गई, वो सब शय की तारीफ में आ गई, और अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं लैसा का मिस्ल ही शय, कि कोई भी शय जो है ना वो अल्लाह ताला के जैसे नहीं है, ठीक है ना। तो अब इससे जो है वो हमें पता लग गया कि अल्लाह ताला जो है ना, हम जिस्म को एक खास अंदाज में समझते हैं, जिस्म, जिस्मानियत, जिहत यानी डायरेक्शन, सिमत ये भी डायरेक्शन ही को कहते हैं, तो अल्लाह ताला ना इन सब से बालातर है, यानी अल्लाह ताला इज अदर देन ऑल ऑफ दिस। अब हमारे मशायख ने इसके ऊपर तो बड़ी जबरदस्त बातें करी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। वो आप में से अक्सर ने सुना होगा हजरत ने, वो किसका क्या नाम था उनका, जिन्होंने अल्लाह ताला की मोहब्बत के ऊपर एक छोटी सी दास्तान लिखी कि भाई मैं जो हूं ना वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के घोड़े के ऊपर सवार, मैं अल्लाह ताला की वसल हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को पाने के लिए जो है ना वो अपनी जो इस्लाह है और अपने मारिफत है उसके पहाड़ के ऊपर चढ़ा चला जा रहा हूँ, राइट। अल्लाह की मोहब्बत के घोड़े पर सवार, यानी अल्लाह की नहीं, मौलाना रोम का तो लफ्ज नहीं कहा था, किसी और का लफ्ज कहा था, खैर बहरहाल हो सकता है मौलाना रोम ने भी ये कलाम लिखा हो। तो मैं मोहब्बत के घोड़े पे सवार होकर के अल्लाह ताला की मारिफत के पहाड़ के ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूँ, चढ़ता चला जा रहा हूँ, चढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। और जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया ना, तो वहां पर मुझे एक खेमा नजर आया, खेमा, मुझे ये पता लग गया कि मेरा महबूब यानी अल्लाह ताला जो है वो इस खेमे के अंदर है। तो मैंने ना उस खेमे के गिर्द जो है वो चक्कर काटने शुरू कर दिए, मोहब्बत के घोड़े पे सवार मैंने उस खेमे के गिर्द जो है वो चक्कर काटने शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो अब ये उन्होंने अपने ये जो भी लिखने वाले शेख थे उन्होंने ये बात लिखी कि भाई ये मेरी मोहब्बत का आलम है, सही है। तो हजरत मुजद्दद तरफ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब लिखा और उनको मुखातिब होकर के फरमाया कि आप जो ये समझ रहे हैं ना कि आपका महबूब खेमे के अंदर है, जी नहीं, खेमे के अंदर कुछ भी नहीं है, आपका महबूब खेमे के अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला एक ऐसी जात है जो कि किसी चीज के अंदर नहीं समा सकती। तो ये आपका वहम है कि आपका महबूब यानी अल्लाह ताला जो है ना वो खेमे के अंदर है, ठीक है ना। अल्लाह ताला तो तुम्हारी सोचों से बुलंद है, वह हुआ सुबहाना हुआ ताला, मुजद्दद लिखते हैं वह हुआ सुबहाना हुआ ताला वरा उल वरा सुम्मा वरा उल वरा सुम्मा वरा उल वरा, अल्लाह ताला तो पाक है हर चीज से, और वो तो बुलंद है हर चीज से, बल्कि जितना तुम समझ रहे हो कि वो बुलंद है, वरा उल वरा वो उससे भी बुलंद है। और अब तुम मजीद सोच रहे हो कि अच्छा वो उतना बुलंद है, राइट, जितना आपने फरमाया अच्छा वो उतना बुलंद है, फरमाया सुम्मा वरा उल वरा वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, जितना कि तुम्हारी अभी सोच पहुंची है ना वो उससे भी ज्यादा बुलंद है। फिर फरमाया कि अच्छा तुम सोच रहे हो कि अच्छा इतना बुलंद होगा अल्लाह ताला, फिर फरमाया सुम्मा वरा उल वरा वो उससे भी ज्यादा बुलंद है। यानी हमारे तसव्वुरात, हमारी कुछ जो है ना वो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकती, ये है अल्लाह सुब्हान ताला, राइट। तो जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मशाइख नकल करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसको कहते हैं हमारे मशाइख कि हसरत नायाफ्त, क्या मतलब कि अल्लाह ताला को पाने की जो जुस्तजू होती है ना वो कभी इंसान की पूरी नहीं हो सकती, हमेशा हसरत ही रहेगी कि मैं अल्लाह को नहीं पा सकता, मैं तो अल्लाह को पा ही नहीं सकता, ये हसरत हमेशा रहेगी। क्योंकि अल्लाह ताला वो जात है कि जिस तक मखलूक पहुंच ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसको हसरत याफ, हसरत नायाफ कहते हैं, ना पाने की हसरत, ठीक है। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की जात है। अब हम अल्लाह ताला के जो है वो चंद छोटे छोटे से जो है वो यारिस कहते हैं, वही पंजाबी जुबान का साइल होता है ना, निक्के 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 कुछ फराइज अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए, हमें उन्हीं के ऊपर तकलीफ होती रहती है, वो नहीं करना जी, नहीं करना जी, नहीं करना, ठीक है ना। और फिर इस अल्लाह ताला के साथ जो है वो हम नाउज बिल्ला खेल कर जाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला जो है ना तो अल्लाह ताला की रहमत है कि हमें जो है वो एकदम से जला के भस्म नहीं कर देते, राइट। वरना तो अल्लाह ताला की शान तो एक जरा सी आप इधर उधर भूल चूक करें, एक आपका सांस जो है वो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरे, अल्लाह ताला की शान ये है कि बस खत्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक सांस तुमने गफलत में लिया, तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने एक सांस मेरी गफलत में लिया है, मेरे जिक्र के बगैर तुमने एक सांस ले लिया, खत्म हो जाओ तुम, बर्बाद हो जाओ तुम, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर चले जाओ तुम, राइट। अल्लाह ताला की शान जो है ना वो इससे भी ज्यादा बुलंद है, ठीक है। तो इंसान को इसी हकीकत से आगाह करने के लिए ये सारे बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे नकल फरमाई है। आगे फरमाते हैं, रात में नींद और दिन में काम की तफसीसात में भी बड़ी हिकमत है, ये भी सब बड़ी हिकमत पर मबनी है। अच्छा, आपने लिखा क्या है कि क्या नमाज में ये तसव्वुर करना कि अल्लाह देख रहा है और किसी चीज का तसव्वुर रहना करना चाहिए, रोशनी का तसव्वुर करना चाहिए? नहीं नहीं हरगिज नहीं, नहीं रोशनी वोशनी किसी चीज का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते नमाज के दौरान, ठीक है। बस इतना तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, बस, ठीक है। तो अपनी जो फोकस है ना, वो फोकस जो है वो क्या करनी है, जब खड़े हुए हैं तो सजदे की जगह के ऊपर फोकस करना है, जब रुकू में जा रहे हैं तो पाओ के जो अंगूठे होते हैं उनके ऊपर दोनों निगाहों को टिका के रखना है, और जब सजदे में जा रहे हैं तो अपनी नाक का जो जो हिस्सा जमीन पे लगा हुआ है ना उसके ऊपर, हमारी इतनी औकात है, राइट, हमने तो इन्हीं मादी चीजों के ऊपर फोकस करना है अपनी निगाहों को, ठीक है ना। और अपनी सोचों को किधर फोकस करना है, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर फोकस करना है, जो आप अमल कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, इस बात के ऊपर फोकस करना है कि मैं जोहरी की नमाज पढ़ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जोहर पढ़ते पढ़ते जो है एकदम से मगरिब शुरू हो गई है, अगर फोकस नहीं किया कि मैं जोहर पढ़ रहा हूँ तो फिर वो तीन रकत के अंदर सलाम फेर देंगे, है ना, या दो रकत की नमाज को जो है वो चार रकत बना देंगे। तो फोकस हमने इन चीजों के ऊपर करना है, यही हमारी बंदगी है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखते हैं कि वहुअल्लज़ी जअला लकुम अल-लैला लिबासन वन्नौम सुबातन व जअल नहारा नुशूरा, ठीक है। तीनों चीजों के लिए अलग अलग जो है वो, मुझे लोग व्हाट्सएप अगर कर रहे हैं तो पता नहीं इस क्लास से रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, मे बी एक मिनट होल्ड करें। उन्होंने अपने कंप्यूटर के ऊपर आईडी लॉगिन करी भी होती है, तो जब वो क्लास में आते हैं तो वो उसी आईडी से ही आ जाते हैं, तो अब व्हाटएवर इज द रीजन, इंशाल्लाह सब खैर हो गया, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह, ठीक है। तो वह अल्लज़ी जअला लकुम, हम ये असल में मलंग किस्म के लोग हैं, हम फकीर, राइट, हमारे पास कुछ होगा तो लोग हमें हमसे छीनेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसको कि लोग जाए वो आकर के हमसे चुराएं, बल्कि हम तो चाहते हैं लोग चुराएं, लोग लें हमसे चीजें, ठीक है। तो फिक्र करने की इंशाल्लाह कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई कॉर्पोरेट अकाउंट की थोड़ी है इस तरह का कि जी छुपा कर रखनी होगी चीजें, है ना, इंशाल्लाह सब खैर होगी। बहरहाल हम तारा ही फाल करने वाले हैं। लिबास हो तो फरमाते हैं कि इस आयत में रात को लिबास के लफ्ज से तबीर फरमाया, ठीक है, कि जिस तरह लिबास इंसान के पूरे बदन का सातिर है, इसी तरह रात एक कुदरती पर्दे की चादर है जो पूरी कायनात पर डाल दी जाती है, ठीक है ना। यानी जिस वक्त रात आती है, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर रात आती है, तो उस पार्ट के ऊपर जो है वो एक चादर पड़ जाती है। सुबातन सब से मुश्तक है जिसके असली मानी पता करने के हैं, सुबात वो चीज है जिससे किसी दूसरी चीज को पता किया जाए, ठीक है, जैसे कि छुरी होती है वो पता करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो सुबात। और इसके ऊपर हम थोड़ी बात भी कर चुके थे तर्जुमे के, यौम सब्त यानी सैटरडे का दिन जो है वो सब्त क्यों कहलाता है, क्योंकि वो यहूदियों के तमाम मामला को पता कर दिया करता था, नींद, और अभी भी करता है वैसे यहूदियों को। नींद को अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाया है कि दिन भर की मेहनतों का थकान यानी जो थकान होती है और कमजोरी इससे पता हो जाती है। अफकार और ख्यालात मुनक़त़ होकर दिमाग को आराम मिलता है, इसलिए सबात या सुबात का तर्जुमा राहत से किया जाता है। मानी आयत की यह हो गया कि हमने रात को एक छुपाने वाली चीज बनाया, फिर उसमें इंसान और सारे जानदारों पर नींद मुसल्लत कर दी जो उनके आराम और राहत का सामान है। यहाँ कई चीजें काबिले गौर हैं कि अव्वल तो ये कि नींद का राहत होना, बल्कि राहत की जान होना तो हर शख्स जानता है, ठीक है, मतलब नींद राहत होती है कि असल में जो राहत इंसानों को मिलती है वो नींद के जरिए से मिलती है, इसी वजह से स्लीप थेरेपी, राइट। और जब लोग जो है फिजिकली फिजिकल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जब जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ जी इनको कोई और मसला नहीं है, कोई वायरस नहीं है इनके अंदर, कोई बैक्टीरिया इनके अंदर नहीं है, ठीक है ना, या इनकी ओवर ईटिंग का मसला भी नहीं है, ये तीन मेजर कॉजेज होते हैं हमारी बीमारियों के, ठीक है। तो अब जब तीन चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं, और फिर वो कुछ जरा जिन भूत वाले मसले भी होते हैं, तो ये चौथी चीज़ जिन भूत और जादू भी एलिमिनेट हो गया, तो अब क्या बच गया, अब खाली फिजिकल स्ट्रेस बच जाता है। बस ये आप स्ट्रेस ज्यादा हैं, आप काम जरा ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको अब जो है ना वो काम कम करने की जरूरत पड़ रही है, आपको सोने की जरूरत है, तो आप बस सोएं, जाकर के घर में आराम करें, आपका ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अमलियात वगैरह की या कुछ, बस आपको नींद की जरूरत है, राइट, नींद से आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो नींद ऐसी चीज है राइट कि बड़े बड़े मसलों को जो है ना इंसान के हल कर देती है। जब खुदा न खासा किसी घर में कोई आफत आ जाए, कोई इंतकाल हो जाए किसी का, तो कितना रोना धोना मचता है, कितना लोग जो है वो अपसेट होते हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन फिर रो रो करके बिल आखिर नींद आ ही जाती है, राइट। और जब फिर नींद से उठते हैं तो फिर जो दिल होता है वो हल्का हुआ हुआ होता है, और पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हालत हो चुकी होती है। तो इतना बड़ा गम किसी को पहुंचा, लेकिन नींद से जो है ना वो गम भी हल्का हो गया। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने नींद की बनाई है। अब यहाँ पर आदत के मुताबिक की बातें भी कि इसके ऊपर जो है वो जरा गौर करने की जरूरत है कि माशाल्लाह बड़ी नेमतें हमें मिली हुई हैं इस दौर के अंदर, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। और वो कौन साहब थे जिन्होंने बल्ब ईजाद किया था, क्या नाम था उनका, बल्ब वाले साहब का, एडिसन, हाँ तो एडिसन, तो एडिसन साहब ने बल्ब ईजाद कर दिया। फिर बल्ब जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो इतना फैल गया दुनिया के अंदर कि अब एक नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि ये यानी बहरहाल इंसानों की हरकतें होती हैं, अब इंसान जो है वो उनके पास जो है वो लिमिट्स तो होती नहीं है, शरीयत वाली लिमिट्स भी नहीं है, और अकल भी नहीं होती, जो वो जिसको लुब कहा जाता है कुरान के अंदर, उलुल अलबाब वालों की जो अकल होती है वो अकल एक अलग चीज होती है, काफिर के पास तो लोग नहीं हो सकता ना, तो काफिर के पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस की और ऑब्जर्वेशंस की कुछ थोड़ी बहुत अकल होती है उसके पास। तो बहरहाल इन्होंने जो है वो एक लाइट बल्ब आर्टिफिशियल लाइटिंग ईजाद करी, वो आर्टिफिशियल लाइटिंग जो ईजाद करी तो हम बड़े खुश हुए कि हाँ जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अब तो रात की तारीकी होती है और उसके अंदर हम बल्ब जला लेते हैं, और बल्ब जो है वो इतना सस्ते से सस्ता होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो गई, ठीक है ना। अब हर बंदा जो है बल्ब अफोर्ड कर रहा होता है, हर तरफ ही लाइटिंग। तो उससे क्या हुआ है कि जो हमारे शहर हैं, ठीक है ना, बल्कि अब तो गांव देहात भी, वहां पे नींद, वो जो रात थी ना, रात जिस रात के अंदर इंसानों ने अपने कामकाज को बंद कर देना था, राइट, और अपने घर में बैठना था और फिर इशा की नमाज पढ़ करके सो जाना था, अब वो रात जो है वो मुसीबत आकर के नहीं देती है ना, रात ही नहीं आकर के देती, वो रोशनी नहीं खत्म होकर के देती, राइट, घर के अंदर भी रोशनी, घर के बाहर भी रोशनी, ठीक है ना। तो अब आपका क्या ख्याल है ये, अब हम तो उसके ऊपर सूरह रहमान की तिलावत लगा देते हैं, इस किस्म की जो 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 इजादात हैं इंसान की, राइट, तो हम जो है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और पीछे सूरह रहमान की तिलावत लगा देते हैं, फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, ठीक है ना। तो अब ये जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है ना, तो अब हर चीज को हम अल्लाह ताला की नेमत कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो नेमतें हैं ये क्या है, ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हैं, ये क्या है, ठीक है। क्योंकि नींद तो अब आपकी नहीं हो रही ना, राइट, नींद तो आपकी बहुत कम हो गई है, ठीक है ना। तो जब नींद कम हो गई है तो क्या ख्याल है, वो जो स्ट्रेस के लिए स्लीप थेरेपी की जरूरत थी, तो अब वो स्लीप थेरेपी तो आपको नहीं मिल रही है, या अगर मिल भी रही है तो बहुत कम मिल रही है, तो उसका इफेक्ट आपकी जिस्म के ऊपर क्या होगा, आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर, आपके मेंटल स्टेट के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, उसका तो नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, राइट। तो इसी वजह से जो है वो दिन के अंदर जो है वो कोल्हू के बैल की तरह से जुते हुए काम कर रहे होते हैं, और रात के अंदर जब घर में आते हैं और आराम का वक्त होता है तो उस वक्त आराम भी नसीब नहीं होता, राइट, क्योंकि उस वक्त भी लाइटिंग, उस वक्त भी काम, मॉल्स जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कहीं रिश्तेदारों के घर जो है वो दावत के लिए जा रहे हैं, तो एक एक बजे रात जो है वो दावत, दावत के अंदर जो है वो गप्पे ही खत्म नहीं हो रही है, 11 बजे वापस आ रहा है कोई, 12 बजे वापस आ रहा है कोई, 1 बजे वापस आ रहा है, राइट। तो नींद तो खत्म हो गई ना, फिर कम हो गई ना बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से फिर बीमारियां पैदा होती हैं, राइट, उसकी वजह से आपके एंग्जाइटी लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, आपका मिजाज खराब हो रहा होता है। जब मिजाज खराब हो रहा होता है तो इस मिजाज की खराबी किसी के ऊपर तो निकलेगी ना, राइट, किसी के ऊपर तो गुस्सा आएगा ना, फिर किसी की जो जो गलतियां हैं वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त तो लगेंगी ना फिर, क्योंकि आपका मिजाज तो अब जो है वो खराब हो रहा है, अब आप तो मेंटली सिक हो रहे हैं, राइट, अब आप तो मेंटली बीमार हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको तो आराम नसीब ही नहीं है, सुकून नसीब ही नहीं है, नींद नसीब ही नहीं है। तो फिर ये जो घरों के अंदर झगड़े, लड़ाइयाँ, तलाकें और मार पिटाई और न जाने क्या क्या, तो क्या ये अब नहीं होने चाहिए कि भाई दिस इज अ लॉजिकल रिजल्ट ऑफ माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें हैं, ये अल्लाह की नेमतों का लॉजिकल रिजल्ट है ना। लेकिन नहीं, हकीकत क्या है कि आप हर चीज को अल्लाह की नेमत की लेबल नहीं दे सकते, इंसानों के अपने हाथों की जो 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 जो, जो लाए हुए फसाद है ना, उनके ऊपर अल्लाह की नेमत के लेबल फिट नहीं करना चाहिए असल में, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि हम अपने छोटी सी अकल की बुनियाद पर करना शुरू कर देते हैं और फिर उनके अंदर हमें कोई हदूद और कयूद का एहसास नहीं रहता, तो वो अगर शुरू में कुछ नेमत की शक्ल नजर आ भी रही थी ना, ठीक है ना, कि जैसे जो है वो रात को अगर लाइट होती है तो फिर जो है वो मरीजों का इलाज हो जाता है, इमरजेंसी जो केसेस होते हैं तो उनको जो है वो आप ट्रीट कर सकते हैं इस आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर, तो चलो जी हाँ, ये एक बेनिफिट है आर्टिफिशियल लाइटिंग का, ठीक है। लेकिन क्योंकि लिमिट्स नहीं है, कोई कोई बताने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, तो अब ये अनलिमिटेड जो है वो इंसान की तरक्की होती है और फिर वो उसके लिए मुसीबत बन जाती है, ठीक है। तो अब ये मुसीबत बजाय तो हमें लगती है कि बस हमें हमारी नींद नहीं हो रही है, लेकिन जरा आप मशायख से जाकर के पूछें, जरा आप डॉक्टर से जाकर के पूछें कि हमारे मुआशरे के अंदर मेंटल हेल्थ के क्या हालात चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ के क्या हालात चल रहे हैं, राइट, लोग एक दूसरे को कैसे जो है ना वो जबाह कर रहे हैं, राइट, लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे जो है वो जुल्म और ज्यादतियां जो है वो बढ़ चुकी हैं, माशाल्लाह जो अच्छे खाते पीते घराने वाले लोग हैं, राइट, जॉब्स लगी हुई हैं, सैलरीज आ रही हैं, तो लॉकडाउन के अंदर जो है वो सुकून के साथ बैठे हुए हैं, राइट, लेकिन इन लॉकडाउन की वजह से ये जो सारी दुनिया में हुए हुए हैं, तो सुइसाइड रेट कितना बढ़ गया है, राइट, चाइल्ड अब्यूज कितना बढ़ गया है घरों के अंदर, माँ बाप के हाथों चिल्ड्रन अब्यूज हो रहे हैं, चिल्ड्रन के हाथों कुछ माँ बाप भी अब्यूज हो रहे होंगे, राइट। तो ये सब कुछ कितना बढ़ गया है इन सब की वजह से। तो भाई वो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है वो आजकल जो है वो पता नहीं स्काई रॉकेटिंग उसके अंदर हो रही है। तो बहरहाल, तो नींद जो है वो तो अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई थी, और उसके लिए जो है वो तारीकी की जरूरत होती है। इस तारीकी को जो है वो हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया है। तो फरमाया कि यहाँ कई चीजें काबिल गौर हैं। अव्वल ये कि नींद का राहत होना, बल्कि राहत की जान होना तो हर शख्स जानता है, मगर इंसानी फितरत ये है कि रोशनी में नींद आना मुश्किल होता है, और आ भी जाए तो जल्द आंख खुल जाती है, राइट। सुबह को आप आजकल जो है छुट्टी के दिन है तो लोग जो है वो इशराक पढ़ करके सोते हैं, तो इशराक पढ़ने के बाद चाहते हैं कि 6 घंटे की नींद जो कि रात को होनी चाहिए थी, वो 6 घंटे की नींद दिन में कर लें, लेकिन दिन में वो 6 घंटे की नींद हो ही नहीं पाती है। दिन में जो है ना वो रोशनी हो जाती है, बाहर से रोशनी आ रही है, बच्चे उठ गए हैं, उनके शोर हो गया, अब आप 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे सोएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात कि यानी इनकी रिसर्चेस के अंदर फिर कुछ और तफसीलात भी तो निकलती है ना, तो वो तफसीलात क्या है उन्होंने बताई है कि जी रात को जो नींद होती है ना, तो उसकी जो जो इफेक्ट होता है वो यानी 6 घंटे सोते हैं ना, तो वो 6 घंटा जो है ना वो इट हैज एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी, जो कि वो 6 घंटे के हिसाब से ही होता है। लेकिन अगर आप दिन में 6 घंटे सो भी जाए ना, तो 6 घंटे की नींद जो कि आप दिन के टाइम में कर रहे होते हैं, अब वो दिन का टाइम क्या होता है, सूरज के निकलने के वक्त से लेकर के जो सूरज ग्रुप के का जो वक्त होता है, ये दिन का टाइम कहलाता है। तो इस दिन के टाइम में कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है, कुछ ऐसा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल्स का सिस्टम चल रहा है, केमिकल सिस्टम जो चल रहा है ना, वो ऐसा यानी रेस्पॉन्ड कर रहा होता है बाहर के एटमोस्फेयर को, बाहर के एनवायरनमेंट को ऐसे रेस्पॉन्ड कर रहा होता है कि जिस वक्त बाहर दिन का टाइम होता है, उस वक्त जब आप 6 घंटे की नींद करते हैं, तो वो आपको 6 घंटे का सुकून प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि 6 घंटे की नींद आपको 2 घंटे का सुकून प्रोवाइड करती है, खाली 1/3 हो जाते हैं उस नींद की इफेक्ट जो होती है ना, नींद का इफेक्ट 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। तो अब दिन में आप बेशक 6 घंटे अगर सो भी लें, तो भी आपको वो वाला आराम नहीं मिल सकता जो कि रात को 6 घंटे की नींद से मिलना था, ठीक है ना। अब ये सिस्टम जो अल्लाह ताला के बनाए हुए, ये लोग तो चंद चीजें सच बता देते हैं भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ये बातें हमें 1400 साल पहले बता दी थी ना कि भाई जल्द सो जाया करो, ईशा के बाद जो है वो मत जागा करो, राइट। तो ईशा के बाद जब सो जाएंगे, ठीक है, तो ईशा कितनी जल्दी हो जाती है, मगरिब के 1-1.5 घंटे 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद ईशा का टाइम शुरू हो जाता है, जब सितारे आसमान पर चटकना शुरू हो जाते हैं, ईशा का टाइम शुरू, ईशा पढ़े सो जाए, फिर फजर से थोड़ी देर पहले उठ जाए, तहज्जुद पढ़े, फजर पढ़े, और उसके बाद अपने दिन का काम करना शुरू कर दें, फिर उसके बाद जो है वो आप जोहर की नमाज पढ़ें, खाना खाएं, फिर कैलूला करें। ये एक नेचुरल सिस्टम है, इस ये है असल में कुदरती सिस्टम, ठीक है ना, जिसके अंदर इंसानों के को जो है ना फिर स्ट्रेस नहीं होता है, एंग्जाइटीज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब पूरे के पूरे सिस्टम को जब आपने उलट दिया, तो अब उसके बाद फिर बात वही आती है कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में आप इंडिविजुअली तो अल्लाह ताला से रोध होकर के अपने गुनाहों की माफी मांग लें और अपनी कब्र को संवार लें, लेकिन दुनिया को नहीं संवार सकते आप। ये दुनिया इतनी मैसअप हो चुकी है, इतनी मैसअप हो चुकी है कि आप ना तो अकेले दुनिया को संवार सकते हैं, और ना आप कोई तंजीम और तहरीक बना करके इस दुनिया को संवार सकते हैं, ठीक है ना। इतना ज्यादा मैसअप हो चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से ना जो हमारे बड़े अकाबिर उलमा है ना, अकाबिर उलमा जो है वो इन चक्करों में नहीं फंसते, दुनिया को संवारने वाले चक्कर, ठीक है ना। वो ज्यादा से ज्यादा या तो अपनी जात की इस्लाह की फिक्र करते हैं, अकाबिर उलमा वो क्या करते हैं, जात की इस्लाह की फिक्र करते हैं, या अगर सिस्टम्स की इस्लाह की भी फिक्र करते हैं ना, तो वो इस हद तक करते हैं कि जिस हद तक जात की इस्लाह जो है वो मुतासर ना हो, राइट। जात की इस्लाह ये असल चीज है, बाकी जो दुनिया के पूरे सिस्टम की इस्लाह है ना, ये तो कोई भी नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता। और इसके ऊपर अपनी एफर्ट्स लगाना, ये सिर्फ टेंशन इससे होती है, और इससे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ टेंशन होगी, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी, और इसके नतीजे में फिर आप اصلاح کی بجائے جو ہیں وہ دنیا میں فساد پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. اصلاح کوئی نہیں کرنی آپ نے پھر, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ ٹینشن اپنے اوپر لیں گے نا دنیا کی اصلاح کرنے کی ٹینشن, تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ الٹا جو ہے نا وہ فساد کا سبب بن جائیں گے, کیونکہ آپ سے ہونے والا تو یہ ہے نہیں. تو ٹینشن جو آپ کے اوپر ہوگی, فرسٹریشن جو آپ کے اوپر طاری ہوگی جب آپ کو ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے ہوں گے, تو فرسٹریشن طاری ہوگی, تو فرسٹریشن کے نتیجے میں پھر آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے پھر, رائٹ. تو یہ کون سی اصلاح ہو رہی ہے بھائی, یہ کون سی تنظیم فلانی ہے اور تحریک فلانی ہے, کیا کرنا ہے اس نے؟ اسے کچھ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ اندھوں کو تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے نا, اس کے لیے تو ذرا بینائی کی ضرورت پڑتی ہے, بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بصیرت دی ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے ان کو انعام دیا ہے بصیرت کا, تو پھر ان کو یہ حقیقتیں الحمدللہ سمجھ میں آتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے, وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر اپنی قبر میں جاتے ہیں. اور ماشاء اللہ ان میں سے اکثروں کی اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر سے پھر خوشبوئیں بھی انسانوں کو سنگھا دیتے ہیں, رائٹ, تاکہ یہ بھی کنفرم ہو جائے کہ ہاں بھائی یہی طبقہ جو ہے نا یہی میرے یہاں مقبول ہے, یہی طبقہ میرے یہاں مقبول ہے. اسی طبقے میں سے چند کی قبروں سے خوشبوئیں بھی اللہ تعالیٰ سنگھا دیتے ہیں, ہے نا. ہمارے قریبی علماء کے یعنی جاننے والے, مطلب ہماری انفارچونیٹلی کبھی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ایک بزرگ کا تو رمضان پہلے فرسٹ رمضان کا انتقال ہوا لاہور کے اندر, رائٹ. ہمارے اپنے قریبی ترین جو لوگ ہیں انہوں نے خود دیکھ کر کے ہمیں بتایا کہ ان کے قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی, تو لوگ مٹیاں اٹھا کر کے لے گئے جو اٹھا سکتے تھے ان کی قبر سے, بعد میں جو ہے وہ قبر کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی مٹی مزید نہ اٹھا سکے, ورنہ تو پھر وہ قبر میں پھر مٹی نہیں رہے گی, ساری شہر والے آ کر کے اٹھانا شروع کر دیں گے. بہرحال ہمارے ایک جانے والے مفتی صاحب ہیں, وہ تو مٹی اٹھا کر کے لے آئے تھوڑی سی, ان کے ہاتھ لگی, رائٹ. تو ایسا بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, کیا ان کے علاوہ کوئی مقبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا؟ نہیں, مقبول تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا, لیکن ان کو دکھا کر کے نا یہ بات کنفرم کر دی کہ بھائی اس عقیدے والے جو لوگ ہیں, اس طریقے پہ جو اپنی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں نا, اللہ تعالیٰ کیا یہ مقبول لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو صاحب تھے نا, وہ کسی ان کا تعلق کسی تحریک سے نہیں تھا, کسی تنظیم سے نہیں تھا, سیدھا سادہ ایک مدرسے کے پڑھانے والے عالم تھے, ایک سلسلہ غالباً چشتی سلسلے کے ایک شیخ تھے بس, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے دنیا اتنی میس اپ ہو چکی ہے, دا پوائنٹ واز کہ اتنی میس اپ ہو چکی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ریسٹ ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب کمپیوٹر کے اندر وائرسز جو ہوتے ہیں نا وہ پھنس جائیں نا آ کر کے, بے شمار وائرسز آ جائیں کسی کمپیوٹر کے اندر, تو اب تو آپ اینٹی وائرس سافٹ ویئر بھی نہیں چلا سکتے نا. اب تو اس کو جی ایک ہی حل ہوتا ہے, جی اس کو شٹ ڈاؤن کریں اور اس کو جو ہے نا پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کون سے موڈ میں وہ اسٹارٹ کرتے تھے کمپیوٹر کو, ایک موڈ ہوتا ہے نا کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنے کا کہ جس کے اندر کے وائرسز نہیں آ سکتے, سیف موڈ میں, جزاک اللہ, سیف موڈ کے اندر ریبوٹ کرنا پڑے گا بھائی, ہے نا. جس کے کنیکشن جو ہے نا پھر ادھر ادھر فالتو چیزوں کے ساتھ کوئی نہیں کنیکشن ہوتا اس وقت, ٹھیک ہے نا. تو سیف پورٹ میں ری بوٹ ہوا گا کمپیوٹر نا, تبھی وہ وائرس ختم ہوں گے, پھر آپ کو سب کچھ دوبارہ سے کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بظاہر حالات ایسے ہی ہیں نا, اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ ساری تفصیلات بتائی بھی گئی ہیں. تو بھائی ہمیں جو ہے نا وہ اپنے 5 فٹ کے جسم کی فکر کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں اپنی بیویوں کی اپنے شوہروں کی فکر کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے قبر کی فکر کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کریں گے نا تو ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے, اور پھر آپ کچھ اچیو بھی کر سکیں گے, کچھ ہاتھ بھی آئے گا, ورنہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی فکروں سے جو ہے نا نہ تو کچھ ہاتھ میں آئے گا اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کو کوئی سکون کی زندگی ملے گی, نہ ہی جو ہے وہ کوئی آخرت سنورے گی, تو خالہ خام خا کر جو ہے نا ایک خود بھی ٹینشن میں آئیں گے اور ساری دنیا کو بھی ٹینشن میں مبتلا کریں گے, ٹھیک ہے. سیدھا سیدھا بڑوں کی مان کر کے چلیں, اور بس سر جھکائیں بڑوں کی مان کر کے چلیں, اسی کے اندر خیر ہے. لیور ڈی ٹاکسیفیکیشن اونلی اکرز ڈیورنگ نائٹ سلیپ, جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا. تو آگے کہتے ہیں کہ یہاں کئی, اچھا یہ ہو گیا چند منٹ ہیں. حق تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی بنایا, اسی طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت ہے, اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ہی وقت رات میں جبری کر دی, ورنہ یعنی جہان سے مراد ان کی جو ہے نا وہ ایک انسان کا جو جہان ہوتا ہے, جو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کا جہان ہوتا ہے, बाकी दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, वो खामखा की जो आजकल की ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से हमें हर वक्त पता लगता रहता है, क्योंकि टीवी खोल के देखते रहते हैं ना, तो जी अमेरिका में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, उधर ये, तो सारा जान जो है वो हमारे अपने ही घर के अंदर आ गया है, ठीक है। लेकिन हकीकत तो ऐसी नहीं है ना, हकीकत में तो जहाँ हुआ है जो कि हमारे फिजिकली हमारे अराउंड है, तो उसके अंदर तो नहीं, रात तारी हो जाती है उस पूरे के पूरे जहान के अंदर। तो रात को जो है ना, अल्लाह ताला ने एक यानी नींद एक जबरी नेमत बना दी, यानी तुम चाहे ना चाहो तुम्हें सोना पड़ेगा, ठीक है ना, कितने ही अपने आप को जगा लो अल्टीमेटली तो तुम्हें नींद आके रहेगी। वरना अगर हर इंसान की नींद के औकात दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते, तो जिस वक्त कुछ लोग सोना चाहते दूसरे लोग कामों में मसरूफ और शोर शोर शुगब का सबब बनते, जैसे कि आजकल है ऐसे ही। इसी तरह जब दूसरों के सोने की बारी आती तो उस वक्त काम करने वाले चलने फिरने वाले उनकी नींद में खलल अंदाज होते। इसके अलावा हर इंसान की हजारों हाजतें दूसरे इंसानों से वाबस्ता होती हैं, बाहमी तआवुन और तनासुर और कामों में भी शदीद हर्ज होता है कि जिस शख्स से आपको काम है उसके सोने का वक्त है, और जब उसके जागने का वक्त आएगा तो आपका सोने का वक्त होगा। तो अब उसका हल क्या होता है कि उसने उस वक्त में जागना है जिस वक्त में आप जाग रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट, थैंक्स टू सबमरीन केबल्स, राइट, इंटरनेट नेटवर्किंग के आप जो है वो माशाल्लाह कोई सोने का वक्त भी नहीं है, कोई जागने का वक्त भी नहीं है। आप दफ्तर में जाते हैं तो आप दफ्तर से तनख्वाह तो पा रहे होते हैं 9 to 5 hours की, राइट, 9 से लेके 5 तक का आपको तनख्वाह मिल रही होती है, लेकिन हकीकत में क्या होते हैं, आप दफ्तर वालों के 24 घंटे के गुलाम होते हैं, राइट, 24 घंटे के गुलाम होते हैं, है ना। वो आपको उन्होंने एक पेजर भी पकड़ा दिया होता है, एक मोबाइल फोन पकड़ा दिया होता है, एक लैपटॉप पकड़ा दिया होता है, और ये आजकल की बात नहीं, मैं तो आज से 25-30 साल पहले की बात करूँ, राइट, जब हमने जॉब करी थी पहली पहली IT की जॉब, तो हम तो 24 घंटे के गुलाम बन गए थे उसी वक्त, ठीक है। तो वो फिर आपका आपकी ज़िंदगी भी नहीं, और फिर उसके बाद फिर उनके पास और भी बहुत सारे वो आपसे फिर वो फॉर्म्स भी भरवा रहे होते हैं कि जी आप जो है वो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अगर आपने कोई चीज़ ईजाद कर ली उस टाइम में तो वो आपके एम्प्लॉयर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वगैरह वगैरह। बहरहाल तो हम जो है ना वो बेसिकली गुलाम हैं, गुलाम बन चुके हैं पूरे के पूरे, ठीक है, जहनी तौर पर भी हैं, और अगर जहनी तौर पर ना भी हो तो भी जिस्मानी तौर पर तो हैं ही, और बाकी जो रही सही कसर रह गई थी वो आजकल पूरी हो रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ अंदाजा होगा कि आजकल क्या हो रहा है। बहरहाल तो थोड़ी कसर रह गई थी वो भी खत्म होने वाली है। इसके अलावा हर इंसान की हजारों हाजतें दूसरे इंसान से वाबस्ता होती हैं। अच्छा, बाहमी तआवुन और तनासुर और कामों में भी शदीद हर्ज होता है कि जिस शख्स से आपको काम है वो उसके सोने का वक्त है, जब उसके जागने का वक्त आएगा तो आपका सोने का वक्त होगा। अगर इन मकासद मकासद की तकमील के लिए किसी बैनुल अक्वामी मुआहिदे से काम लिया जाता कि भाई सब लोग अपने सोने का एक ही वक्त मुकर्रर कर लें, अव्वल तो ऐसा मुआहिदा अरबों करोड़ों इंसानों में होना आसान नहीं था, फिर उस पर कारबंद रखने के लिए हजारों महकमे खोलने पड़ते हैं। भाई किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको डिपार्टमेंट्स की भी तो जरूरत पड़ती है ना। तो इसके बावजूद आम कानूनी और मुआहदाती तरीकों से तय होने वाली चीज़ों में जो खलल हर वक्त रिश्वत रियायत वगैरह के सबब पाया जाता है वो फिर भी बाकी रहता। अब ये सो कॉल्ड है वो दुनिया के अंदर पीस के लिए जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है, तो अब यूनाइटेड नेशंस की इफेक्टिवनेस भी तो देखे ना, राइट, जहाँ पे जंग होती है वहाँ जब तक मुसलमान अच्छी तरीके से जलील और रुसवा होकर मर ना जाए उस वक्त तक पीस ही नहीं आता, राइट। जब अच्छी तरीके से जो है वो यानी ख़त्म हो जाता है सारा मामला, तब जो है वो शोर करते हैं जी पीस होना चाहिए पीस होना चाहिए, फिर भी पीस नहीं आता उसके बाद भी, राइट। तो ये क्या है तमाशे, इंसानों के आपस में जो है माहदे में यहाँ भी सब के सब जो है उन्होंने ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब कर लिया और ये कर लिया और ढिकाना कर लिया, ठीक है, लेकिन उल्टा जो है वो फिर बाद में पता लगता है कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं वो फिर कहते हैं कि असल में तो इनका तो मकसद ही जंग करवाना था, पीस का तो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ठीक है, लेकिन खैर उनको तो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कह करके जो है वो उड़ा दिया जाता है वैसे ही, ठीक है। लेकिन अगर कंस्पिरेसी थ्योरी को आप ना भी देखें, फिजिकल सिंपल सिंपल जो है वो इनके हरकतों को देखें जैसे कि सामने नजर भी आते हैं, तो फिर भी जो है वो कौन सा फायदा हो रहा है भी किसी को, शोर मचाते रहते हैं खाली। एनीवे अच्छा, टाइम तो ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के फिर क्लास को ख़त्म करते हैं कि अक्सर हम जल्दी सो जाएं तो मेहमान रात के 12-1 बजे आ जाएं तो क्या मेहमान को मना कर दें? दूसरी तरफ मेहमान की खातिरदारी का भी ख्याल होना चाहिए, ऐसी सूरत में क्या करें? अब आप अगर सो जाएं फिर मेहमान आ जाएं तो डिपेंड करता है फिर कि या तो उनकी बेल बज रही हो और आप दरवाजा ही ना खोलें, ठीक है, यानी आपकी नींद इतनी गहरी हो कि जी आपको बेल की आवाज ही ना आए, तो फिर तो आपके ऊपर कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन बात वही है ना कि जैसे कि अभी अभी ये बात यही कही थी ना कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं ना कि अब आप जो है ना वो बाय फोर्स उनको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना, बाय ऐसा आप डंडा चला करके जो है ना वो इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते। तो ये मेरी मुराद जो थी वो सिर्फ मुल्क की हद तक नहीं था कि मुल्क को आप ठीक नहीं कर सकते या दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर हमारा घर भी शामिल था। आप घर के अंदर भी डंडे लहरा करके ना घर के निजाम को भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब घर के निजाम को भी ठीक नहीं कर सकते हैं, मुल्क के निजाम को भी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो दरमियान में जितने सारे निजाम हैं उनको भी आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से जो आपके रिश्तेदार हैं तो उन रिश्तेदारों को भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं कि भाई अल्लाह के बंदे जरा कुछ खुदा का खौफ करो, 12 बजे कोई टाइम है घर आने का, ठीक। तो आप तो ऐसे डंडा हिला करके ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से ना अभी तो यानी उसको हमारे यहाँ कराची में कहते थे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो अब तो उसके साथ ही चलना पड़ता है ना, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। तो हम तो उन हालात के अंदर रह रहे हैं कि जिनके अंदर हमारा जिस्म जो है ना वो इस निजाम के हवाले हो चुका है, जिस्म हवाले हो चुका है, ठीक है। तो अब जिस्म को आप इनसे इनसे रिक्लेम नहीं कर सकते इस इन हालात के अंदर, ठीक है ना। तो इन हालात में ना जो चीज हमारे कब्जे में अभी तक है वो सिर्फ हमारा दिल है, ठीक है ना। तो दिल उनके हवाले करने की बजाय दिल को जो है ना वो जरा बचा करके रखें और अल्लाह ताला के हवाले करें। इसके ऊपर हमारा अभी भी काबू है और इसके ऊपर इंशाल्लाह पता नहीं जब तक ये नैनो टेक्नोलॉजी, अब आज तो वो भी बातें हो रही हैं कि वो क्या वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट करेंगे तो उससे जो है वो DNA तब्दील हो जाएगा और फलाना ढिमकाना हो जाएगा सब कुछ। तो लगता है यानी खौफ इस किस्म का फैल रहा है कि जैसे दिल भी हमारे काबू में उसके बाद नहीं रहेगा, वो है ना गॉड जीन जो है ना वो निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर वो अल्लाह की मार्फत की जो सलाहियत ही खत्म हो जाएगी हर इंसान के अंदर से, है ना। इस किस्म की भी बातें चल रही हैं आजकल तो। लेकिन बहरहाल वो बातें सच्ची हैं झूठी हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें इंशाल्लाह ये गॉड जीन के निकालने वाला मसला नहीं, वहां तक बात पहुंचेगी उससे पहले इंशाल्लाह सलाम खा जाएंगे इस दुनिया के अंदर, ठीक है। बहरहाल तो दिल तो है ना भाई अपने पास, ठीक है, जिस्म उनके हवाले, दिल तो अपना ही है ना। तो दिल को अल्लाह ताला के हवाले करें और दिल के अंदर अच्छी चीजों को अच्छा जाने और बुरी चीजों को बुरा जाने, ठीक है ना। सिर्फ इस वजह से कि ये टेक्नोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट तो इस वजह से टेक्नोलॉजी हैज टू बी गुड, ये कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से सोचना, ठीक है ना, कि भाई यहाँ भी सारी दुनिया जो है वो क्योंकि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है और हम भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब उसकी हर चीज़ को प्रेस करना भी लाजमी है इसके हमारे लिए। नहीं, ये कोई लाजमी नहीं है आपके लिए। जो गलत है उसको गलत सोचें, समझें अपने दिमाग के अंदर, है, और जो सही है उसको सही समझें, ठीक है ना। बस इसी हद तक ही हम करें, बाकी अल्लाह ताला ने इस दुनिया को रीसेट करना है, अल्लाह ताला का ये काम है, ये काम अल्लाह को छोड़ें, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा बहुत इंसान मेहनत शुरू कर देना तो फिर अल्लाह ताला मदद भी फरमाते हैं और काफी चीजें इवन इन हालात में भी हमारी जिंदगी में सवर सकती हैं। अगर हम जरा सुन्नत तरीके के ऊपर मेहनत करना शुरू कर देना तो हमारी जाती जिंदगी में बहुत कुछ अभी भी सवर सकता है। जैसे कि जब आप जरा थोड़े ज्यादा मौलवी बन जाते हैं ना, ठीक है ना, तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना जो 1 बजे घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, ये लोग खुद आपसे फिर वो हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ठीक है ना, कि फिर वो कहते हैं यार ये तो मौलवी हो गई है, ये तो बिल्कुल ही मौलवी हो गया है, अब इनके पास क्या हमें फायदा होगा, इनके पास क्या, ये तो गप्पे ही नहीं लगाते बैठ करके, राइट। ये इनके घर में तो TV नहीं है, इनके घर में तो क्रिकेट पे बात ही नहीं होती है, ये तो सियासत पे बात ही नहीं करते हैं, तो क्या फायदा इनके घर जाने का, फिर वो खुद ही आपके घर आना छोड़ देंगे, है ना। तो जरा मौलवी बने जरा अच्छे तरीके से तो फिर आपकी अल्लाह ताला ना इन लोगों से खुद ही निजात अता फरमा देंगे ऐसे लोगों से, ठीक है ना। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना कम से कम, राइट, स्पेशली व्हेन वी फील डिफिकल्ट टू वेक अप इन फजर। तो बहरहाल वो मेहमान साहब, जब तक आपने ऐसे लोगों को अपने अपने आप से मायूस नहीं किया अब तक, ठीक है ना, तो अब उसका खुमियाजा ये भुगतना होगा कि ऐसे लोग आपके घर आते रहेंगे, ठीक ठीक है ना, फिर आपकी फजर भी जो है वो कजा होगी, आपको जो है वो सोना भी आपके लिए मुश्किल होगा और आपके लिए जागना भी मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ना ऐसे लोगों को अपने से मायूस करना पड़ता है, फिर वो आपके घर आना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपने मायूस नहीं किया तब तो वो आएंगे, अब जब वो आएंगे फिर दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि उनको बाहर खड़े खड़े जो है वो कहते नहीं जी मैं तो सोने जा रहा हूँ, भाई आप चले जाए वापस, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। क्या हजरत मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आएंगे? हाँ, जो तरतीब नजर आती है हदीसों से वो तो यही है कि वो पहले आएंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे। अगर किसी के पास थोड़ा जज्बा है तो रात को 2:30 बजे आप उठें, सऊदी अरब टाइम के हिसाब से रात के 2:30 बजे, पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 4:30 बजे, ठीक है ना, और इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे, और tasawwuf.co के ऊपर एक शेखुल हदीस साहब होते हैं मौलाना हबीबुल्ला साहब, तो उनका बयान आ रहा होता है सुबह 4:30 बजे पाकिस्तान, 2:30 बजे सऊदी अरब। वो आजकल माशाल्लाह कयामत की निशानियों के ऊपर बड़े जबरदस्त बातें फरमा रहा है, ठीक है ना। तो उस बयान को सुनने की कोशिश कर लें, ठीक है। तो आधे घंटे से कम का वो बयान होता है, उसके अंदर माशाल्लाह अभी तो छोटी अलामत उन्होंने बयान करी है और फिर उसके बाद बड़ी अलामत ये सब भी बयान फरमाएंगे। tasawwuf.co जी, जजाकुमुल्लाह। इधर भी अगर लिख दें मर्दों की तरफ भी, रमजान मुबारक में रात भर यानी फजर तक जागकर इबादत कर सकते हैं क्या? हाँ, रमजान मुबारक तो बहुत थोड़े से दिन होते हैं ना, वो भी आखिरी अशरे के अंदर इस तरह की इबादत है, वो भी ताफ रातों के अंदर जो कि टोटल 5 है, तो उसमें एज एन एक्सेप्शन जो है ना वो आप रात को जाग करके इबादत कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जागने में ये ख्याल रखें कि जो अहम जरूरियात होती हैं, फराइज होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो इनकी वजह से आपकी मुतासर ना हो। 4 to 9 AM सो जा सकूँ क्या? ऑफिस आवर्स 10 to 4 AM है। ये आप पर्सनल पे सवाल करें ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रात में भी 1 घंटा सोने का टाइम मिल रहा है। लोग कहते हैं कि खुश मौलवी बन गए, तो वो आते नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खातिर हम खुश मौलवी अच्छे हैं, ठीक है। यानी ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए तो खुश मौलवी बनना ही बेहतर है, लेकिन अलबत्ता अपनी बीवी के लिए खुश मौलवी ना बने, अपने बच्चों के लिए खुश मौलवी ना बने। भाई उनको तो नहीं अपनी जिंदगी से निकालना है ना, उनको तो रख करके अल्लाह की रजा कमानी है, ठीक है ना। लेकिन हर एक के साथ आपको वो डर मौलवी बनने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चले खत्म करते हैं। अलामत है वो ध्यान से रिकॉर्डेड एट यूट्यूब। अच्छा, जजाकअल्लाह खैर। हाँ, मैं भी पूछने वाला था कि इसकी रिकॉर्डिंग है, आप प्लीज़ व्हाट्सएप के ऊपर अगर मुझे भेज दें।